आप हैं SBS हिंदी के साथ।
मुख्य समाचारों में खेल अनुदानों के दुरुपयोग पर ब्रिजिट मैकेंजी पर इस्तीफा देने का दबाव। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की आलोचना के बीच फेडरल सरकार द्वारा कोयला उद्योग के लिए बचाव। और भारत इसरो ने फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया संचार उपग्रह। और लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। मॉरिसन सरकार पर खेल मंत्री ब्रिजिट मैकेंजी के मामले में उनको हटाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पाया गया कि जब सेनेटर मैकेंजी खेल मंत्री थीं तब उनके विभाग द्वारा अनुमोदित 10 अनुदानों में से 9 ग्रांट्स 2019 की प्रमुख मार्जिनल सीट्स के लिए गई थीं। ग्रीन्स ने इस $100 मिलियन की कम्युनिटी स्पोर्ट्स ग्रांट के पूरे मामले की सेनेट जांच के लिए कहा है। सेनेटर मैकेंजी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
2,000 projects, over 2,000 projects were applied for funding for nearly $400 million worth of program funding. We had $100 million over 3 rounds that was able to fund 684 projects. I'm absolutely confident that I would have loved to have nearly $400 million to fund all sporting clubs that applied, because you can't tell me one tennis club is more meritorious than another.
वन नेशन लीडर सेनेटर पॉलिन हैंसन ने भी सेनेटर मैकेंजी को हटाने की मांग की है। वहीं विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीजी ने इस मामले की पूरी छानबीन करने को कहा है।
This is quite extraordinary and unprecedented. This is outrageous behavior by a government that really believes that it has a right to do whatever it likes, whenever it likes, wherever it likes. And the truth is that her position is untenable as a minister.
फेडरल सरकार ने ब्रिटिश प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो की तीखी आलोचनाओं के बाद अपने जलवायु परिवर्तन रिकॉर्ड का बचाव किया है। बुशफायर संकट के बारे में बोलते हुए सर डेविड कहते हैं कि कोयला खनन के लिए कोलिशन के समर्थन ने ये दिखाया है कि वो पर्यावरण की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन गृहमंत्री पीटर डाटन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के कोयले के निर्यात को कम करने से पर्यावरण को कोई लाभ नहीं होगा। नाइन नेटवर्क पर बात करते हुए पीटर डाटन कहते हैं कि कोयला ऑस्ट्रेलिया की मजबूत अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है।
We are not going to close down our economy. Us stopping exports of coal to India or to China will mean that they will source it from other countries. It will mean emissions will go up. So there's no benefit to the environment, and we would lose $70 billion from our economy. So we need to be realistic.
विपक्षी लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी भी इससे सहमत हैं। उनका कहना है कि जहां सरकार को कम उत्सर्जन की ज़रूरत है वहीं ऑस्ट्रेलिया के कोयला उद्योग को बंद करना इसका हल नहीं है।
If you stopped exporting coal immediately, then that would not reduce global emissions because there's enough displacement from other coal exporting countries to take up that position and that coal will produce higher emissions rather than less emissions.
न्यू साउथ वेल्स के इलावारा क्षेत्र में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को शार्क ने काट लिया है। 3 एम्बुलेंस और एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और उस व्यक्ति को इलाज के लिए वुलनगोंग हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। शार्क के दांत उस व्यक्ति के पैर की हड्डी में चले गए और लिगामेंट पर नुकसान हुआ। अभी वो स्थिर स्थिति में है। पैरामेडिक्स सभी तैराकों से सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं। विदेश मंत्री मारिस पायन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बुशफायर संकट में ऑस्ट्रेलिया को दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। नई दिल्ली में इंडिया फोरम में बोलते हुए सुश्री पायन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता अमूल्य रही है।
I enormously appreciate every expression of goodwill and support that I've received since I arrived from international friends literally around the world here in India. It has been a challenging time and we very much appreciate also those contributions of international support that have come from so many corners in assisting us.
न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से राहत मिली है, जबकि 100 से अधिक मिलीलीटर की बारिश से कुछ जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ का कारण भी बना है। लेकिन बारिश से अग्निशामकों और सूखाग्रस्त किसानों को राहत मिली है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के ग्राम रीडर का कहना है,
So it means that the rainfall pattern's been a little sporadic, but under those thunderstorms there's been some particularly heavy falls. We have seen a number of centres up in the north and northeastern parts of the state recording over 100 millimetres, Bulladella 112 millimetres, Bundara 105. That's the wettest since 2011, so very welcome there.
न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस ने बारिश का स्वागत करते हुए ये चेतावनी भी दी है कि बुश फायर संकट खत्म नहीं हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फ्रेंच गुआना से एरियल 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किया। ये 2020 में इसरो का पहला उपग्रह प्रक्षेपण है। ये उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविजन दूर संचार और प्रसारण सेवाएं मुहैया करवाएगा। एरियन 5 यान ने करीब 38 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया। GSAT-30 INSAT-4A की जगह लेगा और उसकी कवरेज क्षमता अधिक होगी। INSAT-4A को 2005 में लॉन्च किया गया था। ये उपग्रह KU बैंड में भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को और सी बैंड में खाड़ी देशों, बड़ी संख्या में एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया को कवरेज प्रदान करता है। और भारत के ही समाचारों में NDTV के समाचार के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने गणतंत्र दिवस के ठीक पहले एक हमले की साजिश को नाकाम किया है। जम्मू पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उधर DSP दविंदर सिंह की गिरफ्तारी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों की सुरक्षा शीघ्र ही 31 जनवरी तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के हवाले करने का आदेश दिया है। दविंदर सिंह DSP हवाई अड्डा सुरक्षा के रूप में तैनात थे और जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों की सुरक्षा का दायित्व अभी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। वहीं दविंदर सिंह की गिरफ्तारी के मामले को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कथित खामोशी पर सवाल उठाए हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 69 सेंट और भारत के लगभग 49 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलियन ओपन में एशली बार्टी का पहला कठिन मुकाबला होगा लिजिया सोरेनेको के साथ। ये वो खिलाड़ी हैं जिसने 2 साल पहले ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में दुनिया की नंबर 1 को हराया था। एडिलेड इंटरनेशनल में बार्टी का खेल प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में मार्किता बोदासोवा को 6-3, 6-3 से हराया। मैच के बाद बार्टी ने अपने फॉर्म और अपनी प्रतिद्वंदी डेनियन कॉनिंग्स के बारे में बात की।
Yeah, I mean, he's getting better and better. I think there are still times in the match where I want it to be, a little bit tighter and a little bit more clinical. But all in all, it's really nice to be back here, generating opportunities for myself and now getting the opportunity to play again on this beautiful court. Yeah, Danielle's an exceptional ball striker. She really is. She has the ability to take the match out of your hands very quickly. Extremely aggressive off return and off that first strike. So I have to have my running shoes on tomorrow and make sure I bring in some variety too.
और उधर ऑस्ट्रेलिया की पुरुष एकल चैंपियन की उम्मीदों को एक निराशाजनक झटका लगा है, क्योंकि एलेक्स डी मिनाउर एब्डोमिनल इंजरी के कारण इस ग्रैंड स्लैम से बाहर हो गए हैं। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में भी मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 27 डिग्री। मेलबर्न में धुएं की धुंध छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री। कैनबरा में भी आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 26 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें और तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और डार्विन में भी बौछारों की संभावना है या वहाँ तूफान भी आ सकता है, अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।